zani dani da ba ma ba ga ma ba ma ga re sa. Ni re ga re ga ma ma ga ma ba ma ga ma da ni zani dani da ba ma ba ga ma ba ma ga re sa. Ma zani da ma ni da ba ma ga ga ma ba ga ma ba ga ma zani da ma ga re sa. Ma zani da ma ni da ba ma ga ga ma ba ga ma ba ga ma zani da ma ga re sa.
Bhakti sang. संगीत की साधना करने वाले भक्त तकरीबन 1000 साल पुरानी कवाली परंपरा को अपनी साधना के माध्यम से ही जिंदा करने वाले भक्त नुसरत फतेह अली खां साहब के भतीजे हमारे साथ आज रिजवान मुअज्जम अली खां मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका निरंकार स्टूडियो में।
बहुत शुक्रिया जी।
रिजवान जी, सबसे पहला सवाल तो ये कि आवाज एक ही सुनाई आ रही है, मुअज्जम नाम जो साथ जुड़ा है आज अलग कैसे है?
हाँ, वो एक्चुअली थोड़ा उनको बैक प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो आ नहीं सके, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मेरी तरफ से माजरत करना।
अच्छा,
तो उसकी तरफ से माजरत है और मैं आई एम हेयर इंशाल्लाह। जो भी अगर मैं यहाँ पे हूँ तो वो भी यहीं पे।
बिल्कुल बिल्कुल, हम दुआ करते हैं उनकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाए। और रिजवान जी, अब दोनों का काम आपको करना है तो जिम्मेवारी और बढ़ जाती है आपके ऊपर। सबसे पहला सवाल आपसे ये कि पाकिस्तान से इंडिया, इंडिया से दिल्ली और उसके बाद निरंकारी समागम स्थल जहां आपने परफॉर्म किया
जी,
कैसा अनुभव रहा आपका?
बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से आए, सबसे पहले जब हम इंडिया में आए हैं 2004 में
जी,
यहां पे आए समागम में, हमने पहली दफ़ा वहां पे परफॉर्म किया 2004 में। बाबा जी से मुलाकात हुई, बहुत बहुत प्यार मिला, सब लोगों से बहुत प्यार मिला। बाबा जी तो हैं ही प्यार वाले, वो तो प्यार बांट रहे हैं
जी।
ये बहुत नसीब वाला इंसान है जो उनसे प्यार लेता है, मैं इस बात को ये ज़रूर कहूँगा। तो तब से लेके अब तक बाबा जी से यहाँ पे आए, उनसे मुलाकात हुई, प्यार मिला, बहुत कुछ मिला। फिर इस दफ़ा हम जब आए हैं तो पहले सबसे पहले हम लोगों ने अजमेर शरीफ हाजिरी दी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अला रहमत, वहाँ से हाजिरी दे के आए और फिर बाबा जी के पास, एक दरवेश से आए दूसरे दरवेश के पास हाजिरी दी। तो बहुत 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 मजा आया और बहुत हम सबके शुक्र गुजार हैं कि वो इतना प्यार हमें दे रहे।
तो ये बात तो तय हो गई कि पहली बार का प्यार ही था जो खींच करके दोबारा आपको लेकर के आया निरंकारी समागम।
जी बिल्कुल।
यहाँ आपने परफॉर्म किया, प्रोफेशनली भी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, लोग बहुत सराहते हैं आपको
जी।
तो इस तरह के माहौल में जब आध्यात्मिकता रहती है, स्पिरिचुअलिटी होती है, आपके सामने ही सदगुरु मौजूद है, तो वो जो अनुभव रहता है, क्या क्या फील होता है उस वक्त?
फीलिंग, एक चीज को ध्यान में रख के गाना और एक शख्सियत को सामने बैठ के सुनाना
जी,
इन दोनों चीज़ों में थोड़ा फर्क है
जी।
ध्यान में कभी आता है कभी नहीं आता, तो एक जो सामने मौजूद है उसको सुनाने की बात कुछ और हो जाती है। फिर वो सामने आंखों में आंखें डाल के साथ में देखना भी, दर्शन भी करना और बयान भी करना, उसका मजा अलग है।
आसान है या मुश्किल?
मेरे ख्याल से आसान है, क्योंकि जिसके सामने बंदा, जिससे प्यार करता हो या जिसको मानता हो, उसके सामने बैठ के एक तो थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाती है कि मैं क्या बोलूं, लेकिन उसके साथ है ये है कि हम लोग प्रोफेशनल हैं, अरसा 750 साल से हमारा घराना कवाली में चला आ रहा है, तो हमें इन चीज़ों की टेंशन ज़रा कम होती है। क्योंकि सामने बाबा जी बैठे हैं और उनके सामने बैठ के बयान करना, गाना और उनकी शान में बोलना ज़रा। अच्छा,
आपने जिक्र किया तकरीबन 750 साल पुराना कवाल बच्चों का घराना जिससे आप जुड़े हुए हैं, और अगर हम कवाली के जन्म की बात करें तो वो भी 1000 साल पहले की है
जी।
तो इसका मतलब ये घराना तकरीबन तभी से है जब से कवाली आई है
जी। बिल्कुल,
आपके पास जो पहुंचा है वो ओरिजिनल पहुंचा है
जी।
तो कोई कवाली सुनते हैं और उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं
जी। सर,
रू गद गद हो गई ये, 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 तात्या दर्शन करके तेरे, रू गद गद हो गई ये, तात्या दर्शन करके तेरे, रू गद गद हो गई ये, तात्या दर्शन करके तेरे, रू गद गद हो गई। गद गद हो गई
ऐसा लगता है कि उस वक्त में और इस वक्त में जो शिक्षा आप तक आई है, क्या वो कव्वाली अब बदलती जा रही है?
कव्वाली जी बिल्कुल, मैं क्योंकि दौर के हिसाब से मतलब जैसे जैसे सदी चेंज होती है वैसे वैसे टाइम चेंज होता है। पहले मीडिया नहीं था, अब मीडिया बहुत है, ये चीज आ गई ना, फर्क आ गया उनमें। तो 750 साल से हमारे घर में ये कव्वाली का मिशन चला आ रहा है। हमारे मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, ज्यादा पीछे क्योंकि काफी लंबी हिस्ट्री है
जी।
इंडिया से स्टार्ट लेता हूँ क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर उस्ताद फतेह अली खान, उस्ताद मुबारक अली खान
जी,
दे आर अ लीजेंड ऑफ अ कव्वाली।
राइट,
उन्हें बहुत माना जाता था उस दौर में, बहुत पूजा जाता था कव्वाली के हिसाब से। ये दो भाई थे जिनमें से मुबारक अली खान की जो औलाद है, जो उनकी नस्ल है वो है मुजाहिद मुबारक अली खान मेरे फादर
जी,
और फतेह अली खान की जो नस्ल औलाद चल रही है वो है नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान।
ठीक है,
राहत इज माई फर्स्ट कजन, नुसरत फतेह अली खान मेरे चचा लगते हैं। तो पहले कवाली जो थी वो मज़ारात पे की जाती थी, दरबारों पे की जाती थी। फतेह अली खान मुबारक अली खान ने उसमें थोड़ा चेंज दिया, चेंज ऐसे दिया कि कवाली पहले जो एक शायरी लिखी सामने आ जाती थी सिर्फ उसको पढ़ा जाता था
जी।
उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें ऐड की, उसे जैसे एक बूके बनाते हैं उसमें मुख्तलिफ कलर के फूल लगाए जाते हैं खूबसूरत खूबसूरती के लिए, ऐसे उन्होंने इसमें शायरी के अंदाज डाले, गिरा डाली खूबसूरत बनाने के लिए। जैसे हम एक कोई भी एक शेर ले लेते हैं तो उस पे खड़े हो के उसको वाजिया करना कि इसका मेन मकसद, इसका मेन मतलब क्या है, इसके मीनिंग्स क्या हैं, उसको साफ करना, उसको गिरा कही जाती। फिर उसमें क्लासिकल अंग पैदा किया गया, ध्रुपद गायकी मेरे दादा गाया करते थे, क्लासिकल गायकी उस्ताद फतेह अली खान मेरे दादा दूसरे दादा गाया करते थे
जी।
उन्होंने उसको मिक्स किया, लोगों ने कव्वाली को पसंद किया, ये एक नई चीज है। फिर कव्वाली जो है वो दरबारों से निकली है, फिर उसके कॉन्सर्ट होने शुरू हो गए, फिर बड़े बड़े लोगों ने महाराजाओं ने सुननी शुरू कर दी, महल्लों में आ गई। फिर उसके बाद उस्ताद नुसरत फतेह अली खान मेरे चाचा और मेरे वालिद उस्ताद मुजाहिद मुबारक अली खान, उनका दौर आया
जी।
उन्होंने कव्वाली को इस अंदाज से पेश किया है कि उसको एक हाइट मिली है।
ये बहुत बड़ी सच्चाई है, यू बिकम द टॉर्च बियरर ऑफ कव्वाली की हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, आप उसे आगे बढ़ा करके लेके आ रहे हैं। आपको विरासत में मिली
जी, बिल्कुल।
बचपन में जब सुना करते थे अपने पिता की, जैसे आपने बात की मुजाहिद मुबारक अली खान साहब, या फिर चचा की बात की नुसरत फतेह अली खान साहब, बचपन में जब उनको सुना करते थे, कुछ आपको ऐसा याद है कि क्या वो गुनगुनाते थे जो आपको बेहद पसंद आता था?
एक मिसाल है कि जहाँ सोना बनता है वहाँ गिरता जरूर है।
क्या बात है।
तो हमारे घर में, हमारे विरसे में है ये, तो फादर घर में गाया करते थे तो हम छुप छुप के सुनते थे।
अच्छा।
क्योंकि कव्वाली बहुत हार्ड वर्क है, इसमें बहुत मेहनत करना पड़ती है
जी।
मेरे फादर चाहते थे कि ये बच्चे हैं ये पढ़ें, अच्छी अच्छी जॉब्स करें। मैं खुद मतलब चाहता था कि मैं आर्मी में जाऊं।
अच्छा।
लेकिन एक शौक था गाने का, स्कूल कंपटीशन में गए, वहाँ से पेपर्स में आया और मेरे फादर ने पूछा, यार ये पेपर्स में आया क्या तुम लोग गाते हो?
अच्छा।
हम लोग डर गए कि अभी हमें मार पड़ेगी।
अच्छा।
तो कहते नहीं नहीं घबराओ नहीं, बताओ तुम लोग गाते हो। मेरे फादर के दोस्त आ गए, पाजी तुसी कहते हो तुहाडे बच्चे गाते नहीं या गा रहे ने, देखो पेपर से आ रहे। फादर कहने लगे कि नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं, मैंने इन्हें कुछ नहीं आज तक बताया, इन्होंने कुछ नहीं सीखा, ये ऐसे बस स्कूल कंपटीशन में नहीं, इन्हें हमारे पास एक श्राइन है, एक बुजुर्ग हैं बाबा लसूरी शाह साहब के नाम से, उनका उर्स हो रहा था तो कहा जी के वहाँ पे परफॉर्म हुआ। मेरे फादर कह रहे लगे नहीं नहीं हमारे खानदान का बहुत बड़ा नाम है, ये बच्चे इस लायक नहीं है कि वहाँ पे परफॉर्म कर सकें।
अच्छा।
प्रेशर लोगों का, तो फादर ने हमसे पूछा कि रिजवान मौजम तुम लोग गा लोगे? तो हम बच्चे थे, वो एक बचपना था, तो हमने कह दिया जी हाँ हम गा लेंगे।
अच्छा।
हमें कहने लगे यार बात सुनो, हमारे खानदान का एक नाम है, इसे खराब मत करना। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे। सो हम वहां पे परफॉर्म किया, लोगों ने बहुत इसको सराहा, बहुत दाद मिली। तो उसके बाद फादर ने कहा कि अगर बेटे आप इसको करना चाहते हो तो इसे प्रॉपर सीखो, अच्छी तरह इसे सीखो, फिर इसे प्रोफेशन बनाना अपना। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने अपने फादर से तालीम लेना शुरू कर दी 92।
लेकिन आपने जब रिजवान जी पहला परफॉर्मेंस दिया था बचपन में, याद है कुछ लाइनें क्या गाया था?
जी मैंने वो अपने चचा उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की गाई हुई एक कव्वाली गाई थी, प्रेज ऑफ गॉड थी, अल्लाहु अल्लाहु, वो हम लोगों ने गाई थी। कव्वाली क्योंकि रिलेटेड है रूहानियत से, بزرگان دین سے, اللہ سے, پروفٹ سے, یہ ان سے جڑی ہوئی ہے. تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ ہی کا نام لینا پڑتا ہے.
جی جی, تو ہم یہ مان لیتے ہیں رضوان جی, بچپن کی وہ جو اللہ ہو پرفارمنس تھی, اس کے بعد آپ نے قوالی سیریس لے لی, اب یہاں جو آپ کر کے جا رہے ہیں, انشاءاللہ یہ ری برتھ ہو, یہ ری آپ کو سکسیس دے جائے اور اونچے مقام تک آپ پہنچے. وہ کچھ پنکتیاں آپ سے ضرور سننا چاہیں گے, کیونکہ اپنے لسنرز کو پھر ہم وہ قوالی سنائیں گے.
ہاں جی ضرور.
تو کچھ پہلے آپ گنگنا دیں.
چلے میں گنگنا دیتا ہوں. اللہ 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 اللہ
اللہ تو ہے, 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 ت
इंतहा कहिए, हुस्न की इंतहा कहिए,
इश्क की इब्तिदा कहिए, हुस्न की इंतहा कहिए,
इश्क की इब्तिदा कहिए, हुस्न की इंतहा कहिए, जमी कहिए, जमा कहिए, नशी कहिए, निशा कहिए, मकी कहिए, मका कहिए, अकल कहती है के मुस्तफा कहिए, इश्क कहता है के बस खुदा कहिए,
शेर पेश कर रहा हूं समाप्त माइएगा।
ये मैं अपने बाहर ढूंढा, मेरे अंदर कौन समाया,
जे मैं अपने बाहर ढूंढा, मेरे अंदर कौन समाया,
जे मैं अपने अंदर ढूंढा, फिर मुकैद जाना,
जे मैं अपने अंदर ढूंढा, फिर मुकैद जाना,
मैं भी तू है, तू भी तू है,
मैं भी तू है, तू भी तू है,
बुल्ला कौन बना,
तू ही तू, तू ही तू,
तू ही तू, तू ही तू, इसमें क्या गुफ्तगू,
मार के बुल है तू, इसमें क्या गुफ्तगू,
मार के बुल है तू, इसमें क्या गुफ्तगू,
सारे आलम को है तेरी ही जुस्तगू,
सारे आलम को है तेरी ही जुस्तगू,
तेरी जलवा करी है या चार सू,
तेरी जलवा
जितनी खूबसूरत ये लाइनें हैं, इनके मायने हैं, उतना ही खूबसूरत आप गाते हैं रिजवान जी।
थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
अल्लाहू के बाद आपको एक ऑफिशियल गुरु मिल गए ये मान लिया जाए तो चलिए, वहाँ जब बचपन की हम बात कर रहे हैं, आपसे आपके चचा ने कहा कि नहीं अब आप सीरियसली लो, तो पहले जो आपके गुरु बने वो कौन थे?
सबसे पहले हम लोगों ने इब्तदाई तालीम जिसे कहा जाता है अपने फादर उस्ताद मुजाहिद मुबारक अली खान साहब से ली। 92 में हम लोगों ने इसे सीखना शुरू किया। 96 में मेरे फादर की डेथ हुई है, और फादर की डेथ के जो दूसरा दिन होता है, जिसे हम लोग मुस्लिमिज्म में कुल कहा जाता है, उस ख़त्म पे मेरे पीर साहब हैं, उन्होंने हमें मेरे चचा उस्ताद नुसरत अली खान साहब का बाकायदा गंडा बन, जिसे शागिर्द, हमारे खानदान में कोई एक दूसरे का शागिर्द नहीं होता।
अच्छा,
तालीम लेते हैं, शागिर्द नहीं होता। तो नुसरत अली खान साहब के हमारे खानदान में हम वाहिद शागिर्द हैं।
अच्छा
जी। और हमने उनसे फिर बाकायदा शागिर्दी की, उनकी, उनसे सीखा, उनके पास रहे, राग्स, कवाली के अंदाज, मौसीकी की जो बेसिक चीजें थी वो उनसे हम लोगों ने सीखी।
लेकिन वो भी वक्त ज्यादा नहीं रहा, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1997
में उनकी डेथ हुई,
राइट, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे थे। तो ये जो एक साल आपने उनके साथ गुजारा, वो कैसा अनुभव रहा?
वो कभी भी हम लोग वो एक साल भूल नहीं सकते, क्योंकि हमारी जिंदगी में वो सबसे प्यारा एक साल था। दोबारा वो साल दोबारा कभी लौट के 97 दोबारा कभी लौट के नहीं आएगा। हम लोगों ने उनके पास बैठ के बहुत कुछ सीखा, जैसे कवाली तो हम लोग कर ही रहे थे, उनसे सीख भी रहे थे, इल्मे मौसीकी उनसे सीख भी रहे थे, लेकिन उनसे क्या और क्या सीखा, अदब करना सीखा
जी,
प्यार करना सीखा, جینے کا اصل بات یہ ہے کہ جینے کا سلیقہ ان سے سیکھا
جی.
کیونکہ وہ بہت پولائٹ انسان تھے
हुँ.
کسی سے کبھی انہوں نے کسی قسم کی غصے والی بات نہیں کی یا کسی کو ڈانٹا نہیں. بس ان کو یہ تھا کہ ہم مجھے صرف موسیقی سے پیار ہے, اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ہے. हुँ.
درویش انہیں ہم کہہ سکتے ہیں جس طرح, اور آپ ان کے بہت پیارے تھے یہ بھی ہمیں پتہ لگا کیونکہ ہم نے جب مسز نصرت فتح علی خان صاحب کی ایک بات چیت ان کی جب ہم نے سنی تھی تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ رضوان اور معظم جو نصرت فتح علی خان صاحب ہیں وہ یہ مانتے تھے کہ ان کے بعد آپ ہی دو بھائی ہیں جو قوالی پرمپرا کو اتنی سفلتا کے ساتھ آگے لے جائیں گے.
جی بالکل, یہ ان کا بڑا پن تھا. اور میری چچی وہ ہم سے بہت پیار کرتی ہیں, وہ جو میری کزن ہیں میرے بہن ہے خان صاحب جی کی بیٹی, وہ بھی ہم سے بہت پیار کرتی ہے اور ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. لائق میں وہ بھی میری ٹیچر ہیں اور ہمیں انہوں نے بتایا بھی تھا کہ آپ کو خان صاحب جی کی بہت ساری دعائیں ہیں. انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ میرے بعد قوالی کے مشن کو جو لے کے چلیں گے وہ رضوان معظم لے کے چلیں
اور آپ سکسیسفلی اسے لے کر جا بھی رہے ہیں
انشاءاللہ. ہم لوگ
رضوان جی ویسے تو بہت مشکل ہوتا ہے لیکن بہت پراؤڈ بھی فیل ہوتا ہے جب آپ اپنے گرو کی ہی کوئی گائکی گاتے ہیں. تو نصرت فتح علی خان صاحب کا کون سے ایسی قوالی ہے جو آپ کے بہت نزدیک ہے اور جسے آپ گانا چاہتے ہیں؟
ہم ویسے تو ان کی کوئی بھی ایسی قوالی نہیں ہے جسے اگنور کیا جائے, لیکن کچھ ہوتا ہے کہ کچھ بندے کے دل کو لگتی ہیں اور ہم لوگ ویسا نہیں ان کے جیسا نہیں پرفارم کبھی بھی نہیں کر سکتے. اور بہت سے ان کے آئٹمز ہیں, بہت سی ان کی قوالیاں ہیں جو ہم لوگ بہت شوق سے سنتے ہیں, بہت شوق سے مطلب اسے گاتے ہیں لیکن ان جیسا گا نہیں سکتے, لیکن انہیں ہم انجوائے کرتے ہیں, مزہ آتا ہے ہم لوگوں کو اس کو پرفارم کرنے.
تو کچھ لائنیں ہو جائیں.
ایک ان کا گائی ہوئی قوالی ہے تم ایک گورکھ دھندا ہو.
اچھا.
اس میں انہوں نے وحدانیت کو پیش کیا ہے اور اس میں اس کا مین تھیم جو ہے کہ وہ رب تو ہی ہے, تو ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے
جی,
بندہ کچھ نہیں کر سکتا. اس کا ایک میں ایک لائن آپ کو سنا دیتا ہوں. تم ایک گورکھ دھندا ہو, تم ایک گورکھ دھندا ہو, آپ ہی اپنا پردہ ہو, آپ ہی اپنا پردہ ہو, تم ایک گورکھ دھندا ہو. یہ میں بہت شوق سے سنتا ہوں اسے.
تو چلیے آپ کے چچا جان, آپ کے گرو اور دنیا بھر میں پسند کیے جانے والے نصرت فتح علی خان صاحب, انہیں کی ایک قوالی سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سے بات کرتے ہیں.
جی سر.
रिजवान जी, हम जब आगे बढ़ते हैं, सूफी परंपरा जो रही है वो बहुत कवालियों में प्रयोग की जाती है, जो संदेश सूफी संत देना चाहते हैं। मैं बहुत ही क्लियर और हो सकता है बहुत ब्लंट हो ये क्वेश्चन, लेकिन आपसे ये जानना चाहती हूँ कि गायकी एक प्रोफेशन भी है और ये अगर सच्चे दिल से गाई जाती है तो स्पिरिचुअलिटी के बहुत नज़दीक ले जाती है आपको। तो रिजवान साहब कितना इसे प्रोफेशन लेकर चलते हैं और कितना इसे ईश्वर तक पहुंचने का जरिया लेकर चलते हैं?
देखिए जी, मैं इसमें एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि कव्वाली की जो मेन थीम है वो है कौल बयान करना।
जी,
कौल बंदे का नहीं हो सकता, कौल हो सकता है दरवेश का। तो दरवेश का कौल बयान करना उसे कव्वाली कहा जाता है। तो हम उसको लेके चले, हमारा खानदान भी उसको लेके चला। मौसीकी ना किसी मजहब का नाम है। मौसीकी का मतलब है एक जगह सबको लाना
जी,
सब में प्यार बांटना। दरवेश भी यही करता है, संत भी यही करता है कि सबको एक जगह लाता है। अब निरंकारी मिशन को देखें, सब आते हैं। मुझे मेरे मुस्लिम भाई भी मिले, मुझे मेरे सिख भाई भी मिले, मुझे मेरे हिंदू भाई भी मिले
जी।
सब में मैंने देखा सब प्यार से एक दूसरे को मिल रहे हैं, किसी के दिल में कोई नफरत नहीं है। निरंकारी मिशन भी यही है, यही मिशन को लेके बाबा जी चले हुए हैं। उनकी सब बात सुन रहे हैं, सब उनको देख रहे हैं, सब उनके दर्शन कर रहे हैं। तो कव्वाली का दूसरा नाम है संतों की बात लोगों के सामने लाना
जी, जी।
असल बात बताना कि रब का पैगाम, असल पैगाम कव्वाली के जरिए ही दिया जा सकता है, वो है प्यार मोहब्बत एक दूसरे से। नफरतें बांटना नहीं, प्यार बांटना कव्वाली का।
और ये सवाल आप जानते हैं आपसे क्यों किया गया था?
जी।
क्योंकि आपने समागम ग्राउंड में जो आपने एक कव्वाली वहाँ गाई थी कि बाबा जी साडा हज हो गया यहाँ इस दर पर आकर, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि उसके अर्थ जो थे वो दिल से निकल कर आ रहे थे, क्योंकि आपकी जो आवाज थी वो वहाँ सुनने वालों के सीधे दिल तक जा रही थी। और एक कलाकार की आवाज तभी दूसरे के दिल तक पहुँचती है जब वो दिल से निकली होती है।
बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि आर्टिस्ट अगर अपने दिल से गाएगा, क्योंकि इसका रूह के साथ ताल्लुक है, कव्वाली का रूहानियत के साथ ताल्लुक है, रूह के साथ ताल्लुक
जी।
है। और जो बंदा रूह से नहीं गाएगा उसको फेम नहीं हो सकता, उसको लोग पसंद नहीं करेंगे। जो रूह से गाएगा उसे लोग सुनेंगे, उसके असल पैगाम को सुनेंगे। तो पैगाम देना उसे रूह से देंगे, उसे दिल से देंगे तो लोग सुनेंगे।
और इसके लिए तो मैं उन सब सुनने वालों की तरफ से आपका धन्यवाद सबसे पहले करना चाहूंगी, क्योंकि वो जो कव्वाली आपने गाई बाबा जी साडा हज हो गया, तो वो न केवल आपका हुआ, आपने सुनने वालों का हज भी करवा दिया। वाह। तो क्यों नहीं हमारे लिसनर्स जो अनफॉर्चुनेटली उस वक्त नहीं मौजूद थे, हमारे वर्ल्ड वाइड लिसनर हमें सुन रहे हैं इस वक्त, उनको वो कव्वाली जो आपने गाई थी सुनवा दी जाए, उनका भी हज करवा दिया जाए। रिजवान साहब, आपने पाकिस्तान से शुरुआत किया, इंडिया तक आप आए, मुझे लगता है विश्व में कोई ऐसी कंट्री नहीं बची होगी जहां आपने परफॉर्मेंस नहीं दिया होगा। रिजवान जी, अभी आने वाले वक्त में कौन सी सीडी के माध्यम से, एल्बम के माध्यम से हम आपकी आवाज़ सुन सकते हैं?
जी, अभी प्रोजेक्ट हमारे स्टार्ट हैं, उन पे काम हो रहा है, क्योंकि कव्वाली में थोड़ा जो यंग जनरेशन है वो थोड़ा हट गई थी कव्वाली से, उनको कव्वाली की तरफ खींचने के लिए हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं। पीटर गैब्रियल के साथ भी हमने रीमिक्स किया था, कोलैबोरेशन की थी कव्वाली की। फिर कोक स्टूडियो पाकिस्तान में हम लोगों ने मिक्स किया है, वो लोगों को बहुत पसंद आया। अभी कुछ प्रोजेक्ट हमारे जारी हैं, वो इंशाल्लाह कमिंग जल्दी ही आ जाएंगे। इन रूम रिकॉर्ड वाले हैं इमरान जी, उनके साथ हमारी बात चल रही है, वो आगे बात कर रहे हैं, तो उनके साथ साथ इंशाल्लाह जल्दी मार्केट में सब कुछ आएगा।
तो चलिए, मार्केट में जब आपकी एल्बम आएगी तो हम भी ये दुआ करते हैं कि लोग सुने और उसे सराहे, क्योंकि कल्चर की, लैंग्वेज की और देशों की जो सीमाएं हैं उनको लांघ करके, उनको तोड़ करके आप जो दुनिया को एक करने का कोशिश कर रहे हैं अपनी कला के माध्यम से, वो एक बहुत ही बेहतरीन कोशिश है और आप इस कोशिश में कामयाब हो। यही दुआ हम करते हैं, पूरा निरंकारी परिवार करता है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द एक बार फिर निरंकारी समागम में हमें आपको सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा।
बहुत शुक्रिया,
बहुत बहुत धन्यवाद।
जोगी 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 लुटी लई
संग